कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आप सबका स्वागत है किशन के घर पे आज भगवद गीता के सत्संग में। या तो बिया या तो बिया
आपने
संस्कृत डाल दिया ये तो सब ठीक है क्या कर दे ये तो बिया क्या जो तो बिया जो तो बिया जो तो बिया ये तो बिया किमाने किमानिया हरे कृष्ण हिमानिया जाते हो हरे कृष्ण। सो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार बाहर सत्संग भगवत गीता का करते हैं, भक्तों के बीच में भागवत का वर्णन करते हैं, ऐसा प्रचार का नेम है। स्कान आपने बीबीसी सुना है? बीबीसी आपके यहाँ है, एक एमबीसी है, मॉरिशस ब्रॉडकास्टर कॉर्पोरेशन, और बीबीसी को क्या बोलते हैं? बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। स्कान बीबीसी मालूम है? स्कान बीबीसी, स्कान बीबीसी है भगवत गीता भागवत चेतना चरितमृत, भगवत गीता भागवत चेतना चरित अमृत, ये हो गया बी बी सी। दिस इज स्कान बी बी सी, स्कान बी बी सी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता भागवतम एंड चेतना चरित अमृत। दिस इज अवर बी बी सी। तो भगवत गीता में चार श्लोक है, उनको कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। मालूम है आपको? चार श्लोक है भगवत गीता में, उनको कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। इन चार श्लोकों में सारी गीता का सार है। एसेंस ऑफ द भगवत गीता इज इन दिस फोर वर्सेस, इट्स कॉल्ड चतुर्श्लोकी गीता। ये दसवें अध्याय में भगवत गीता के हैं, 8, 9, 10, 11। पहला श्लोक है मतः परत्रम न अहम सर्वस्य परभवः मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितः। इसका क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभव। अहम भगवान कहते हैं अहम मैं, सर्वस्य सबका, प्रभव का मतलब जिससे निकलते हैं, प्रभव मतलब सब पैदा कहां से होते हैं, मुझसे सब पैदा होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझसे सब पैदा होते हैं। मत सर्वम प्रवर्तते, मत मुझसे, फिर दोबारा सर्वम सारे प्रवर्तते, जो कुछ तुम कर रहे हो संसार के अंदर, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये भी भगवान कहते हैं मेरी कृपा से हो रहा है। प्रवर्ते, प्रवर्ते का मतलब किसी काम में लगना, प्रवर्ते। इति मत्वा, जो ये जान लेता है, भजते माम, मेरा भजन करेगा। जिसने आपको पैदा किया, जो आपको चला रहा है, the one who has created you and one who is maintaining you and one who is allowing you to do the day to day duty, if you know this, then you must worship him। तो उसका भजन करना चाहिए। जो आपको नौकरी देता है, जिसके बाद आप नौकरी करते हैं, जो आपको तनख्वाह देता है, उसको भी जाके सुबह सुबह नमस्कार करते हो ना, नमस्कार सेठ जी, करते हो कि नहीं करते? तो संसार में जो देता है उसको हर एक आदमी नमस्कार करता है ना, करता है कि नहीं करता है? हिंदी सब समझते हैं, हिंदी में बोलना है कि अंग्रेजी में बोलना है कि? तो सब भगवान कहते हैं सब मुझसे निकलते हैं, सबको मैं पैदा करता हूं, उत्पत्ति मुझसे होती है, और सारा जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी प्रेरणा से हो रहा है, मैं करा रहा हूं तब हो रहा है। इति मत्वा, जो ये बात जानेगा, भजते माम, मेरा भजन करेगा। तो अर्जुन ने कहा आपका भजन कौन करेगा महाराज, सब तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कहता है बुद्धा, बुद्धा का मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होगा वो ही समझेगा, मूर्ख नहीं समझेगा। बुद्धा भाव, भाव का मतलब कृष्ण भावना भावित होगा। समन्वित, समन्वित का मतलब ठीक तरह से, सम्यक रूप से, सम्यक रूप से का मतलब होता है बाकी सब छोड़ू, सब चीजों को छोड़ के मेरा भजन करेगा। नवे अध्याय में भगवान ने क्या कह दिया, मन मना, मन मुझ में लगाओ, भाव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। अर्जुन पूछे महाराज ये सब आपको ही करें, क्यों मैं आपको क्यों करें, आपकी पूजा करें, आपको नमस्कार करें, आपके भक्त बने क्यों? तो दसवें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां दिखाई, ऐश्वर्य दिखाया, ऐश्वर्य क्यों करो, तो चमत्कार को नमस्कार है संसार में, है ना, चमत्कार को नमस्कार है ना, जो चमत्कार करेगा आपको उसको नमस्कार करेगा आदमी, या चमत्कार को नमस्कार है या डंडे को नमस्कार है, जो डंडा दिखाएगा हाँ जैसे खाओगे वैसे करेगा। तो भगवान चमत्कार भी दिखाते हैं और डंडा भी दिखाते हैं। कालो अस्मि लोक क्षय प्रवर्धो, नहीं मानोगे तो मैं काल का रूप हूं और सब कुछ तुम्हारा हर लूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान ने क्या दसवें अध्याय में बताया, अपनी विभूति। हरे कृष्णा, हरि प्रिया, क्या बताया भगवान ने, विभूति ऐश्वर्य, जो तुमको संसार के अंदर अच्छा लगे, जिसको तुम समझो कि बहुत अच्छा है, समझ लो वो मेरी वजह से अच्छा है। किसी को अच्छा देखो, कोई अच्छा आपको, कोई अच्छा आपको सुंदर किसी का चेहरा देखे, अरे भगवान इतना सुंदर आपने बनाया, आप कितने सुंदर होगे। कोई अच्छी बात सुनने में आ रही है, इतना अच्छा, क्या भगवान ने इसको वाणी दी है। तो भगवान की महिमा तो उसमें देखने की आना चाहिए। किसी को भी देखो, उसमें जो भी अच्छाई है वो अच्छाई भगवान कहते हैं मेरा ऐश्वर्य है। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वो ऐसे भगवान कहते हैं मेरा सम्यक रूप से, ठीक तरह से मेरे भजन में लग जाएगा। तो बुद्धिमान, ओनली इंटेलिजेंट पर्सन देव वर्शिप में, ये सत्य सातवें अध्याय में पहले भगवान कह के आए हैं। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। हजारों में से कोई एक होता है जो सीधे रास्ते के ऊपर चलता है। सिद्धि का मतलब है सीधे रास्ते के ऊपर चलना, और हजार ऐसे जो सीधे रास्ते पे चलते हैं उनमें से कोई एक है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जानता है। तो हजारों में कोई एक धर्म, कोटि मध्य कोई एक धर्मचारी, चैतन्य चरितमृत में लिखा है कोटि मध्य कोई एक धर्मचारी, हजारों करोड़ों में से कोई एक है जो धर्म का आचरण करेगा। ऐसे कोटि धर्मचारियों में से एक कोई कर्मनिष्ठ, और ऐसे कोटि कर्मनिष्ठों में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ, मध्य कोटि ज्ञानी श्रेष्ठ एक मुक्त, और कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त। ये रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 84 लाख जोनियों में कितने लोग भ्रमण कर रहे हैं, उसमें स्थावर है जंगम है, कुछ चल सकते हैं कुछ नहीं चल सकते, जो चल सकते हैं उनमें भी कम से कम इंसान है, और इंसान में भी जो हाँ इंसान है मानव है इंसान है जो जो मानव है उनमें से भी बहुत से तो मूर्ख हैं सारे। लेकिन मूर्खों में कुछ अच्छे हैं, वो वेद को जानते हैं लेकिन वेद का अर्थ नहीं जानते हैं, फिर भी दुनिया के अंदर मंदिर में जाएंगे भगवान को आरती करेंगे, बाहर जाएंगे तो सारी बेईमानी का काम करेंगे। दिखाने को तो मंदिर में जाएंगे लेकिन काम सब दुनिया में वही करेंगे जो अपराध के काम है। इसलिए इनमें से भी कोई एक होता है जो धर्मचारी होता है, जिसका आचरण धर्म के ऊपर ठीक होता है, और ऐसे धर्म के ऊपर चलने वाले में कोई एक कर्मनिष्ठ होता है कि भगवान को मेरे कर्म का फल मैं दे दूं। कर्मनिष्ठ में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोई एक होता है जो भगवान को जानने के लिए तत्पर होता है, और ऐसे ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त होता है जो संसार के बंधन से मुक्त होता है, मोह से मुक्त होता है। कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त, कोई कृष्ण भक्त एक ही कोई मुश्किल से होता है। तो वो कौन से होते हैं? बुद्धा, वो बुद्धिमान होते, इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान होते। तो कृष्ण भक्त इज इंटेलिजेंट, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बुद्धिमान है कि उसने सार को चुन लिया है, सार को, he has selected in his life the essence, सार ग्रही, इसको बोलते सार ग्रही, जो सार को ग्रहण करे। तो कृष्ण भक्त बहुत बुद्धिमान है, बुद्धा, हाँ बुद्धा मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वो ही केवल ये सब जान के मेरा भजन करेगा। समन्वित को प्रभुपाद लिखा है बहुत सावधानी से, विद ग्रेट अटेंशन, समन्वित सम्यक रूप से। तो अर्जुन ने ऐसे देखा भगवान की तरफ, अच्छा वो आपका भजन करेगा, कैसा भक्त होता है वो कैसा भक्त है? पहले तो भक्त वो जो भगवान को सब कुछ जाने, कि हम सबको पैदा भगवान ने किया, हमको चला भगवान रहा है, हमारी सारी संसार के अंदर समस्याओं का समाधान केवल भगवान की सेवा में है, और ये समझकर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ठीक तरह से बड़ी सावधानी से करेगा। तब अर्जुन पूछता है वो भक्त कैसा होता है, वो भक्त कैसा होता है? तो ये श्लोक जो इसके बाद है वो भक्त के लक्षण बताएगा, द क्वालिफिकेशन ऑफ द भक्त, क्वालिटीज ऑफ ए भक्त, भक्त का आचरण कैसा होगा। मच्चित्त मदगत्त प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसा भक्त है मेरा? मच्चित्त, चित्त किसको कहते हैं? चित्त हृदय को कहते हैं, हृदय, हृदय को चित्त, जिसमें एक चित्त का अर्थ है मन। जैसे पहला श्लोक पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम में क्या लिखा है उसमें, चेतो दर्पण, चेतो का मतलब हृदय। ये हृदय जो हम शास्त्र की भाषा में जिसको हृदय कहते हैं वो असल में मन है। उसके दो विभाग हैं, मन में दो जगह हैं, एक जगह के अंदर सारा समाचार होता है, इंफॉर्मेशन होती है, और दूसरी जगह में सारे उनके फोटो होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन है गुलाब जामुन, शब्द गुलाब जामुन आएगा ना तो चित्र के अंदर गुलाब जामुन का फोटो देखने में आएगा, लाल लाल होता है, रस वाला होता है। और सांप स्नेक तो एकदम अंदर चित्र दिखेगा, वो मन में वो चित्र दिखेगा। तो चित्त मत चित्त उनके मन में मेरा चित्र होता है, उनके मन में मेरा चित्र होता है। चित्र मीन्स मेरा मेरा फोटो होता है। भक्त कैसे मेरे हैं जो मेरा भजन करते हैं कि उनके दिल में मेरा चित्र होता है, अथवा उनका चित्त मुझ में लगा हुआ होता है। चित्र शब्द चित्र पर मालूम है, चित्र ना, चित्र मतलब फोटो है ना, इसको चित्र बोलते हैं ना। आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? फोटो फोटो हो फोटो ओके, तो चित्र फोटो ओके। और आपको मालूम है एक यमराज का एजेंट है, वो सबके कंधे के ऊपर बैठा होता है, उसका नाम क्या है? चित्र गुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? सीक्रेट फोटोग्राफर। गुप्त गुप्त का मतलब सीक्रेट, छुपा हुआ। चित्र का मतलब फोटो, सीक्रेट फोटोग्राफर, दिखता नहीं है एंड इज टेकिंग फोटो एवरीवेयर। जो दिन रात में 24 घंटे में हम काम करते हैं उसकी कैमरा ऑन है। और मरने से पहले एक बार वो सारी रील को दिखाता है, और उस वक्त मरने वाला बोला मैंने किया, अरे नान। तो मरने वाले सब दिखाए बहुत पीड़ा में मरते हैं, क्योंकि वो रील में देखते हैं कि उन्होंने ये सब अपराध किए हैं, वो सब फिल्म दिखती है उनको, वो एक्शन रिप्ले में दिखाता है कि ये तुमने सब किया है, हमको तो भूल गया तुमने लिख दिया है क्या। उसका नाम क्या है? चित्र गुप्त। तो चित्र गुप्त सबका फोटो लेता है। आजकल बड़े शहरों में पुलिस लाल बत्ती के ऊपर ना कैमरा लगे होती है, गाड़ी उसको तोड़ के गई ना उसका फोटो निकालेगा, आपके घर में आ जाएगा, 200 रुपया भरो। नहीं मैंने नहीं तोड़ा। बोले निकालो फोटो तुम्हारा इसके अंदर निकला हुआ है। अगर उस कैमरा से फोटो निकालेगा 200 रुपया और लेगा, 200 कैमरा के फोटो का, क्योंकि फोटो गाड़ी का फोटो निकाल लेता है वो कैमरा लगी हुई है, फोटो निकलते जाते हुए के गाड़ी तेज गई फोटो निकल जाएगा। इंस्टेंट कैमरा यहाँ है क्या? नहीं मॉरिशस में अभी नहीं आया है, नहीं आया। तो बहुत बड़े 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 देशों में ये कैमरा ऐसी है कि पुलिस वाले को खड़े होने की जरूरत नहीं है, जाके फोटो देख के पैसा जाए, और फोटो मांगोगे तो 200 रुपया और लगेगा। अगर वो चित्रकूट कहेगा तुमने ये क्या बोल, नहीं मेरे को फोटो दिखाओ, तो वो फोटो दिखाएगा आपको तो डबल पैसा लगेगा। तो मद चित्त मान्या इसका अर्थ क्या हुआ? भक्त मेरा वो है जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसा रहता है। जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसा रहता है। The devotee is one in whose heart Lord is always प्रेमंजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु अवलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। ये मेरे भक्त हैं, इनके आंखों में इतना प्रेम है कि हृदय में हर समय वो मेरा चित्र देखते रहते हैं, वो मेरा चित्र देखते रहते हैं। इसको कहते हैं मत चित्ता। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा था कि तुम ये दाने मेरे 9 लाख के हार के दांत से तोड़ के फेंक रहा है, बंदर है ना, तुमको नहीं समझ में आता? बोलता है मां इसमें देखता हूं कहीं राम जी है क्या, इस मोती में राम है क्या देखता हूं। तो मां ने बोला कि तेरे अंदर राम है क्या, ऐसे बजरंग बली खोल के सीना दिखाया तो अंदर सीताराम, अंदर सीताराम। इसको कहते हैं मत चित्त, इसको मत चित्त कहते। कि जिसके चित्त में सदा भगवान समाया, हर समय भगवान को, जो सदा भगवान को अंदर देखेगा वो किसी से दुख कैसे देगा, किसी से बुरा कैसे बोलेगा, किसी को कष्ट कैसे देगा, तो कर ही नहीं सकता ये काम। जिसको भगवान देखेगा वो तो कुछ बेईमानी कर नहीं सकता, संसार के अंदर कोई कष्ट नहीं किसी को दे सकता। इसलिए भक्त दयालु होते हैं, भक्त दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को सदा अपने हृदय में देखते हैं। मद चित्त, और दूसरा शब्द क्या, मद गत प्राण। अगर मेरा चित्तर अंदर से देखने में नहीं आएगा तो उसका प्राण निकल जाएगा। मद गत प्राण, मद मीन्स मी, गत मीन्स इफ आई डिसअपियर, इफ आई गो अवे, प्राण मीन्स ही विल गिव अप हिज लाइफ। तो आपका क्या हाल है, आपको दिख रहा है भगवान अंदर में, आपके हृदय में भगवान दिख रहा है क्या, कौन दिख रहा है अंदर, आंखें बंद करके देखो अंदर क्या दिख रहा है, डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरा है तो अच्छी बात है, अंधेरा है तो अच्छी बात है, क्योंकि चौथा श्लोक में भगवान कहेगा तुम्हारे अंधेरे का तो मैं नाश कर दूंगा, लेकिन अंदर किसी और भूत का अंदर चित्र होगा तो फिर भगवान हाथ नहीं लगाएगा। अंधेरा है तो ठीक है, यू हैव डार्कनेस, देयर इज नो प्रॉब्लम, ही विल क्लीन दैट। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जतमः, देयर इग्नोरेंस आई विल डिस्ट्रॉय, रिमूव। लेकिन किसी और का चित्र दिल में है तो भगवान आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अब किसका चित्र अंदर है ये आप निर्णय कर लो, यू डिसाइड हुज हुज फार्म इज इन योर हार्ट। आपके मन में सदा कौन बसता है, कौन बसता है मन में सदा, ऐसे दुनिया में दुनिया वालों से पूछो, पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों को यहां लगे होते हैं एक सोने का चेन, उसके अंदर यहां एक दिल का फोटो, उसको खोल के देखो उसमें किसका फोटो है, जो उसमें फोटो है वही उसके दिल में बसता है, किसका है देख लो जाके। ओंकार, ओम इति एकाक्षरम विहारन मां मनु समरयुध्य च, भगवान कहते ओम इति एकाक्षरम विहारन, उच्चारण ओम का करो लेकिन माम, लेकिन ध्यान मेरा करो, देखो मेरे को, कहो ओम, अहम ओम कौन है, वेद्यम पवित्रम ओमकार, वेद्यम में पवित्र ओमकार मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। ओम क्या है पता है, ओम कृष्ण का शब्द रूप है, शब्द रूप। वो कैसा है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ये छोटा हरिप्रिया है ना, ये कहेगा बोलने पापा पापा भी नहीं आएगा ना, ऐसे करेगा ना, लेकिन बड़ा हो जाएगा सब समझ में आ जाएगा तो बोले तो इसका नाम लेगा, दादा को बोलेगा तमाल तमाल कृष्ण पापा, दादाजी दादाजी बोलेगा। तो जो अभी कच्चे होते हैं ना आध्यात्मिक, वो ऐसे करते हैं, लेकिन जिसको पता है वो बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कच्चे हैं अभी तक, बच्चे हैं, तो इसलिए उनके लिए वो उच्चारण है। तो जब बड़े हो जाएंगे तो पता लग जाएगा कि ओम किसका रिप्रेजेंटेशन है, किसका शब्द रूप है। तो ओम भगवान का शब्द रूप है, साउंड इन साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा इज ओम। तो अच्छा है, मदगत प्राण, अगर मैं नहीं दिखूंगा भक्त को तो भक्त प्राण दे देगा। तो भक्तों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान को मन में बसा के रखने का। श्वास 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 मालूम है ना, श्वास श्वास इसको बोलते हैं सांस, श्वास श्वास सिमर गोविंद, एक एक श्वास के साथ भगवान गोविंद के नाम का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि मरने का मतलब है सांस अंदर गया बाहर नहीं आएगा, सांस तो लिया, बाहर निकलेगा, वापस ले सकते नहीं ले सकते, कुछ पता नहीं है। तो मरना किसको कहते हैं? जहां सांस बंद हो जाए। तो हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास सिमर गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। जो चिंता है मन में वो सारी समाप्त कब होगी? जब हर श्वास के साथ भगवान के नाम का सिमरन होगा। दिन रात में 24,000 बार हम श्वास लेते हैं, कितनी बार? तो 24,000 भगवान के नाम रोज जपने जाइए कम से कम। 16 अक्षर का हरे कृष्ण मंत्र है, एक माला से 100 गिन लो, कितना हो गया? 1600। 16 माला से कितना हो जाएगा? ऐसा पूरा कर दिया, गिन लो 16 × 16 कितना हो जाएगा? 1600 16 24। थोड़ा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हाँ, मैथमेटिक किसी को नहीं आती है, गणित किसी को नहीं आती है। It's very difficult to, nobody knows mathematics. Everybody is now, पुराने जमाने में सब याद होता, अभी सबने कैलकुलेटर से देखेगा एकदम, बुद्धि काम नहीं करती। Anyway, कहने का भाव यह है कि 24,000 सांस लेते हैं तो 24,000 नाम कम से कम दिन रात में जपने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, भगवान का चित्र अंदर में है, भगवान का स्मरण अगर नहीं है, भगवान की सेवा में लगे हुए नहीं है, तो भक्त कौन है? मदगत प्राण, उसका प्राण निकल जाएगा, वो जीता नहीं, जी नहीं सकता। कोई ऐसा उदाहरण है संसार में कि भगवान नहीं है तो उसका जीना उसको स्वीकार नहीं है? प्रभु जी कहते हैं हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का जीवनी ऐसा है कि दिन रात में 3,00,000 बार भगवान के नाम का स्मरण करते थे। और जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उसको कहते हैं सिद्ध बाकुल ट्री। उस दर बैठते थे, भगवान का निरंतर जप करते रहते थे। चेतना महाप्रभु स्वयं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने जाया करते थे। एक दिन हरिदास ठाकुर भगवान के चारों चरणों को पकड़ के प्रार्थना करने लगा, बोला प्रभु जी अब मेरे को जीने अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं जीना चाहते हो? बोला मैं भगवान का नाम पूरा नहीं कर पा रहा, मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे को जीना अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भगवान का नाम लेने में मुझे अभी कठिनाई हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, इसलिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। और महाप्रभु के चरण पकड़ के महाप्रभु के सुंदर मुख को देखते हुए हरिदास ठाकुर ने प्राण त्याग दिया। मदगत प्राण, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, हरे कृष्ण। कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। अगर नाम आपके हृदय में नहीं घूम रहा है तो फिर आपका हरे कृष्णा, तो फिर मदगत प्राणा, तो फिर प्राण निकल जाना चाहिए। जो छोड़ दीजिए, शांति से रहिए, नो फॉर्मेलिटी। उदाहरण दूसरा, हरे कृष्णा, कौन है? अमर, वो कल जो हमको लाया था स्पोर्ट काम से आ रहे सीधा, गुड। हरे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपना इस संसार के अंदर अवतार लेकर आके जब काम समाप्त करके वापस चले गए, तब अर्जुन द्वारका गया हुआ था। अंतिम समय में भगवान के पास एक था उद्धव, जिसको भगवान कह रहे थे कि जो कुछ मेरा सारा आध्यात्मिक दिव्य भक्ति भाव का शिक्षा है वो सब मैं आपके अंदर रखता हूं, और संसार में आप मेरे प्रतिरोधी रूप के रूप में रहिएगा। उस वक्त भगवान का जो रथ चलाता है सारथी दारुक वहां था। दारुक को भगवान ने कहा तुम जाओ, अर्जुन द्वारका में आया है, उसको यह संदेश दो कि मेरी सारी रानियों को और द्वारका से बच्चों को लेकर हस्तनापुर चला जाए। मेरे जाते ही समुद्र सारी द्वारका को डुबा देगा। तीसरा उस वक्त व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास आया, मैत्रेय ऋषि। भगवान ने कहा मैंने आपको वरदान दिया था तो आप बैठिए, और भगवान ने भागवत का ज्ञान मैत्रेय ऋषि को दिया, और ज्ञान देने के बाद कहा ये ज्ञान आप मेरे परम भक्त विदुर को देना, और फिर भगवान अपने स्वधाम चले गए। अर्जुन को यह संदेश मिला तो अर्जुन का प्राण निकल ही जा रहा था, लेकिन उसने कहा आपको भगवान ने सेवा दी है। तो क्योंकि भगवान ने सेवा का कहा था अर्जुन को, इसलिए अर्जुन जीवित रहा के भगवान की सेवा संपन्न करनी है। लेकिन जब अर्जुन हस्तनापुर पहुंचा, सदा जब वो हस्तनापुर आता था पहले माता कुंती को प्रणाम करने जाता था। उस दिन वो बहुत दुखी था, सीधा महाराज युधिष्ठिर के पास सभा में गया। कुंती मां ने पूछा अर्जुन आया पार्थ? हाँ, तो हमेशा आप हमारे पास सदा आता था, आज क्यों नहीं आया? श्री का बहुत दुखी दिख रहा था और कह रहा था भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए, नहीं सुना कुंती ने, कृष्ण चले गए, कुंती महारानी ने प्राण दे दिया। कि कृष्ण थे तो हमारा जीवन था, कृष्ण नहीं तो हम जी के क्या करें। मदगत प्राणा, मैं चला गया तो उनके प्राण चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे सुना अर्जुन से कि भगवान श्री कृष्ण वापस अपने स्वधाम चले गए, महाराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतारा, बोला ये राज तो कृष्ण ने दिया था इसलिए कर रहे थे, अब हम राज कायल के लिए भोगेंगे, अब राज का भोग नहीं करेंगे। तब भीम ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा कि आप नहीं राज करेंगे तो हम भी आपके साथ हैं। अर्जुन ने नकुल सहदेव ने उतार दिया, बाल खोल दिए, राज का भोग नहीं करेंगे। भगवान ने सेवा दी थी, कर रहे थे, भगवान नहीं रहे तो किसके लिए बैठे यहां रहे, अब हम यहां नहीं रहेंगे। उसी समय परीक्षित महाराज बहुत छोटा बालक था, बुलाया गुरुजनों को किसको राज तिलक दो। एक तरफ माता कुंती देह त्याग दिया था, घर में शोक था, एक तरफ परीक्षित का राज अभिषेक हो रहा है, और एक तरफ ये पांडव घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग आरोहण किया, द्रौपदी साथ लेकर चले गए संसार को छोड़ के, भगवान नहीं रहा तो रह के क्या करेंगे। मदगत प्राण, तो भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान है हमारे मन में, हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो हमारा जीना ठीक है, भगवान की सेवा में नहीं है तो काय के लिए जिए, किसके लिए जिए। मदगत प्राण, तो अर्जुन पूछा मदगत प्राण तो फिर वो जीते कैसे हैं, वो कैसे जीते हैं फिर संसार में। हाँ जी,
भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई?
मृत्यु तो हुई नहीं, मृत्यु होती तो उसकी कहीं ना कहीं तो समाधि होती ना, देह तो छोड़ी नहीं, उसी देह के साथ चले गए। हाँ
हाँ
पांव में एक जरा ने तीर मारा था, वो स्थान है वहां देख के आया हमें। ये तो दिखाने के लिए संसार को कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं उनको तो भगवान चले गए ऐसे दिखते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से भगवान अपने धाम ऐसे के ऐसे चले गए जैसे थे।
जो आया वो जाएगा,
वो जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो आया है जैसे जेल में जो आया है वो तो सजा खत्म होगी तब जेल से जाएगा, लेकिन जेल का सुपरिटेंडेंट जो है या राजा जो है वो जेल में जब चाहे जब आए, जब चाहे तब जाए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है।
तो मैंने एक और मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश, लेट श्री ओम प्रकाश शर्मा, वो मेरे पिताजी बताते थे कि बिना छिड़ी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, समय समय की बात है संतो, समय बड़ा वलमान।
वो मालूम है भीलों से अर्जुन हार गया था, वो क्यों हार गया था उसके पीछे कथा क्या?
क्योंकि कृष्ण जी नहीं रहे ना,
कृष्ण जी नहीं रहे ये तो ठीक है, लेकिन अर्जुन को बाण की जरूरत भी नहीं थी, उसको युद्ध करना था धर्म के लिए, और ये सारी जो लेके गए ग्वाल ये वही गोपियां थी जो उनकी सेवा में थी, उनको वहां जाना था। उनका बहुत बड़ा भावार्थ लिखा है शास्त्रों में, जो
शास्त्रों में मेरे पिताजी और बोलते थे कि युधिष्ठिर के साथ सिर्फ कुत्ता गया था स्वर्ग में,
हाँ बाकी सब रास्ते में रह गए थे,
रास्ते में
सबके शरीर सबके रास्ते में रह गए थे, बराबर रास्ते में रह गए थे, कि एक एक त्रुटि सबके अंदर थी, इसके कारण रह गए। द्रौपदी अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी इसलिए रास्ते में गिर गई, और भीम छुप छुप के खाता था इसलिए गिर गया, उसको अपनी सुंदरता, ये सब बातें हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये सब भगवान के भक्त है, ये सब भगवान के धाम में गए, कोई संसार का नहीं है। वो उनका एक देव का देह था, जैसे अर्जुन इंद्र का अंश था, तो उसमें से इंद्र तो अपने इंद्र लोक चला गया, लेकिन अर्जुन जो था वो भगवान का नित्य सखा है, वापस भगवान के धाम गया। ये तो डबल रोल कर रहे थे, एक अंश देव का था वो देव लोक में गया, और एक अंश तो भगवान का नित्य सखा है अर्जुन सदा के लिए, वो तो वापस उधर गया। तो बहरहाल ये तो भगवान कैसे गए, भक्तों को इस बात में बहुत रुचि नहीं होती है, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान सदा हमारे बीच में हो। इसलिए रथ यात्रा जब होती है जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ का मंदिर है बहुत बड़ा सुंदर, उसको द्वारका मानते हैं हम, और 2 किलोमीटर आगे सामने गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर को हम वृंदावन मानते हैं हम। तो साल में भगवान जगन्नाथ जी 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा में जाते हैं, तो गुंडीचा मंदिर जिस दिन भगवान आते हैं रथ यात्रा से एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाके झाड़ू लेके उसकी सफाई करते हैं, गुंडीचा मार्जन, भगवान स्वयं सफाई करते हैं कि आज भगवान वृंदावन आ रहे हैं। लेकिन जितने वैष्णव गौड़िया हैं वो जब जगन्नाथ जी वापस उल्टा रथ जाता है तब वहाँ वो रहते नहीं है कि भगवान वापस जा रहे हैं, हम कैसे जाने देंगे वृंदावन से, तो उनका उसमें रुचि नहीं होता है कि भगवान जा रहे हैं। लेकिन भगवान को जाना है, तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने कहा जन्माष्टमी आप यहाँ रुक जाइए, अब जैसे यहाँ जन्माष्टमी है 4 तारीख को 3 तारीख को मानो वो जा रहे हैं जहाज में, कल जन्माष्टमी रुकिए ना, प्रभुपाद ने कहा जन्माष्टमी भगवान की रोज कहीं ना कहीं हो रही है, तो भगवान कहीं ना कहीं रोज प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान का इस दुनिया में आना और जाना ऐसे है जैसे सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, न सूर्य के जन्म लेने को कोई कहता है कि सूर्य पैदा हुआ है, न सूर्य के अस्त होने को कोई कहता है कि सूर्य मर गया। सूर्य जब यहां नहीं दिख रहा है तो इस वक्त दिन है अमेरिका में, जब भगवान श्री कृष्ण यहां नहीं दिख रहे हैं तब कहीं और अवतार लेके कहीं लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान की नित्य लीला होती है, वो चलती रहती है, कभी उस लीला को कभी भगवान कहीं ना कहीं किसी लोक में अभी प्रकट हो रहे हैं और किसी लोक से अभी जा रहे हैं, तो ये लीला भगवान की हो ही रही है। तो हमारे ये तो ऐसे है जैसे कब भक्त बुलाते हैं तो भगवान आते हैं, जैसे ये किशन जी ने हमको बुलाया हम यहाँ आ गए, अब 1 घंटे के बाद सत्संग समाप्त करके हम वापस मंदिर चले जाएंगे, अब हम आए तो कोई कहेगा इसने जन्म लिया, हम गए तो कहेंगे मर गया महाराज, तो ऐसे थोड़ी होगा, हम मर थोड़ी जाएगा, हम वापस जाएगा मंदिर में और वहां सुबह फिर सत्संग करेगा, आपके लिए मर गया क्योंकि आप सुबह सत्संग में नहीं आओगे, आपके लिए मैं मर गया, लेकिन उधर आएंगे वो सत्संग सुनेंगे नहीं। कल सुबह दादी नहीं हाँ, कल सुबह उधर भागवत का सत्संग हम करेगा, लेकिन यहां से हम जाएगा तो आपके लिए मर गया। हाँ तो ऐसे हो गया ना, आपने बुलाया हम आया, हम जाएगा, आया था, जन्म हो गया, अभी प्रकट हो गया था, सर्वभौम प्रभु पैदा हो गया, इतना बड़े का बड़ा, उधर के नीचे गया मर गया, ऐसा नहीं। नहीं मैं कहता हूँ ऐसे, जैसे ये कहने का भाव ये है, इसको मैं आपको शर्मा जी, जैसे लोग समझते ऐसे हैं, जैसे भगवान यहाँ आते हैं ना, तो वो कहीं अपना काम कर रहे थे, भक्तों ने बहुत प्रेम से बुलाया तो आ गए, जब काम खत्म हो गया तो वापस चले गए, तो चले गए तो वहां जाके दूसरा काम शुरू कर दिया, सेवा में लग गए कहीं ना कहीं अपने भक्तों की। तो भगवान का आना और जाना हमारी तरह नहीं है, हम इस संसार में आते हैं जैसे जेल के अंदर अपराधी आता है, जेल में कौन है, अपराधी है ना, कुछ गलती हुई है तब जेल में डाल दिया है, लेकिन उसी जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट रहता है ना, जेल का पुलिस का ऑफिसर अंदर रहता है ना, लेकिन वो जेल के अंदर अपराध करके नहीं आया है। और फिर अगर उस देश का मुख्यमंत्री जेल में जाना चाहे तो किसी वक्त भी जा सकता है ना, और जब निकलना चाहे निकल के आ सकता है। तो ऐसे जितने जीव संसार में हैं, अपने ही संसार में किसी कारण अपराध के इस संसार रूपी जेल में फंसे हैं। साधु संत महात्मा आते हैं जैसे पुलिस सुपरिटेंडेंट आता है संसार में, उनको कोई दंड के लिए नहीं भेजा गया, लेकिन उनको जो जेल में है उनको सुधारने के लिए भेजा गया है, ताकि वो दोबारा गलती न करें, उनको शिक्षा देने के लिए भेजा गया है। और भगवान, भगवान जब इच्छा होती है तो आ जाते हैं, और जब हो जाए इच्छा नहीं होती है तब चले जाते हैं। तो भगवान का आना और जाना ये दिव्य है, ये भगवत गीता का सबसे सबसे जो मुख्य श्लोक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवत गीता। प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ष कौन सा है बोलो, तो बहुत से भक्तों ने बहुत से समय पे बहुत सी बातें बोली, सर्वधर्मानुपद्य सबसे मुख्य है, मन मना भव मद भक्तो सबसे मुख्य है, तद्विधि प्रणिपाते न सबसे मुख्य है, लेकिन उस दिन प्रभुपाद ने कहा सबसे मुख्य है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। जो मेरे संसार में जन्म लेने को, जन्म कर्म और जो मेरी लीला है दिव्यम, दिव्य मानता है, दिव्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल, वन हु कंसिडर माई अपियरेंस इन दिस वर्ल्ड एंड माई पास्ट टाइम्स ट्रांसेंडेंटल इन इसेंस तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म व्हेन ही गिव अप द बॉडी विल नेवर कम अगेन अर्जुन, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो भगवान के इस संसार में आने को और जाने को और यहां जो लीला करती है उसको क्या समझना चाहिए, दिव्य। दिव्य का मतलब अलौकिक, लौकिक नहीं है, लौकिक मीन्स वर्ल्डली, अलौकिक मीन्स ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो भगवान का जन्म और आना जाना लौकिक नहीं है, इट इज नॉट जस्ट वन ऑफ द लिविंग बींग। और ये भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं, क्या कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेतत परम तप। अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए, अर्जुन ने कहा हां, बोला जितने जन्म तुम्हारे और मेरे हुए, क्योंकि हम दोनों सखाएं साथ रहते हैं, मेरे को सब याद है, तुम कब मेरे साथ थे, तुमको सब भूल गया। तो जीव को सब भूल जाता है, लेकिन भगवान को तीन काल याद रहते हैं, त्रिकाल, त्रिकाल मतलब भूत भविष्य वर्तमान, तीनों भगवान को पता होता है। तो क्यों जीव भूलता है, व्हाट इज द काज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, प्रभुपाद राइट्स, चेंज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, शरीर में परिवर्तन होता है इसलिए हम भूल जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हम थे अब जवान हो गए तो बचपन की सब बातें भूल गई, और बुढ़ापे में जाएंगे तो जवानी की बातें भूल जाएंगी, और जब ये शरीर चला जाएगा तो सब संसार की बातें भूल जाएंगी। तो भूलने का कारण क्या है? चेंज ऑफ शरीर के परिवर्तन होता हो ना, चेंज ऑफ द बॉडी इज कॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो भगवान को क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि उनकी उन्हें के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो सदा के लिए वैसे के वैसे रहते हैं। नव यौवनम च, वो भौतिक शरीर नहीं होता है, आध्यात्मिक शरीर है, जिस चीज की हमारी आत्मा बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। क्या है आत्मा? सच्चिदानंद है, सदा के लिए रहने वाली है। मर्त न जायते न मर्यते वा कदाचन, न मरती है न पैदा होती है आत्मा। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो जिस चीज की आत्मा कहां से आई? भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके, सारी आत्मा मेरा अंश है। तो इसका मतलब जिस चीज की आत्मा बनी हुई है, पूरे का पूरा भगवान उस चीज का बना हुआ है। जैसे आपने कभी देखा है बच्चों के लिए कभी टाफियां ऐसी होती हैं, उसकी शक्ल मान देखने में करेले जैसी होती है, लेकिन बना हुआ मिठाई का होता है, खाएंगे तो पूरे का पूरा मीठा होता है। तो शक्ल कैसी है? शक्ल तो करेले जैसी है, लेकिन खाएंगे तो मीठा है, क्योंकि पूरे का पूरा चीनी से बना हुआ है। एक कभी बात कर रहे थे, एक बाबा जी कहीं से घूमता हुआ जा रहा था महाराज, तो भिक्षा लेने जा रहा था, तो किसी घर के अंदर से बच्चे लड़ रहे थे आपस में सुबह सुबह। एक बच्चा बोला था मैं हाथी खाऊंगा माता जी, मुझे हाथी दो। दूसरा बोला नहीं मैं शेर खाऊंगा शेर। तो बोला नहीं नहीं मैं घोड़ा खाऊंगा। महाराज बोला छोटे बच्चे हाथी शेर घोड़ा खा रहे हैं, देखूं तो सही ये कहां से आए हैं। तो एक पराठा रोटी पूरी सब्जी हाथी घोड़ा खा रहे हैं महाराज। महाराज ने दरवाजा खड़खड़ाया, बोला माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे बच्चे दिखाओ, हाथी कौन खाएगा घोड़ा कौन खाएगा, है कौन से आदमी है कि ये डायनासोर है। माता जी ने कहा महाराज कल दिवाली थी, हमने मिठाई के हाथी घोड़े बनाए हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे को ये हाथी दे, वो कहता है मेरे को घोड़ा दे, वो तो मिठाई का बना हुआ है। तो ऐसे जैसे पूरे का, जैसे कहते भागवत जो है वो पूरे का पूरा रसमय है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं निकालने का, वो पूरे का पूरा मिठाई का बना हुआ है, उसके मिठाई ही मिठाई है। तो ऐसे भगवान पूरे का पूरा जो बना है चिन्मय है, सच्चिदानंद है। हमारा आत्मा केवल सच्चिदानंद शरीर नहीं है, लेकिन वो पूरे का पूरा उस चीज का बना हुआ है, इसलिए भगवान को कुछ भूलता नहीं। भगवान को कुछ नहीं भूलता है, हमको भूल जाता है। जिसको भूलता है वो जीव है, जिसको नहीं भूलता है वो भगवान है। भूलता इसलिए हमारे को है कि हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। 7 दिन पहले आज के दिन दोपहर में आपने क्या खाया था बताओ? लास्ट थर्सडे को दोपहर को क्या खाया था पता है? मतलब याद है, आप अपने घर में खुद बनाया था, क्या खाया था हमको भूल गया, भूल गया ना। लेकिन भगवान को जितने जीव इस संसार में 84 लाख जूनियों में जितने असंख्य जीव हैं, हर एक के कर्म के एक एक सेकंड का पता है, इसलिए उसका नाम है अभिज्ञ। भागवत में पहले पहले श्लोक है भागवत का, जन्माद्यस्य यतः इतरतस्त अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब वो इतना जानता है अच्छी तरह से, इतना हर एक जीव के कर्मों को इतना अच्छी तरह से जानता है कि इस संसार के अंदर दो आदमियों का चेहरा एक जैसा नहीं बनाया, दो आदमी के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं है। हाँ, दो आदमी के अंगूठे निशान एक जैसे हैं, गवर्नमेंट में अंगूठे के निशान लगाते हैं ना, अंगूठे का निशान क्यों दूसरे दो का एक जैसा नहीं होता है? नो टू फिंगरप्रिंट्स आर अलाइक, नो टू फेसेस आर अलाइक। हाँ, इस दुनिया में कोई ताला चाबी बनाता है ना, ताला चाबी क्या बोलते हैं आपके भाषा में ताला चाबी को? हाँ, कदना, ताला चाबी। तो बड़ी अच्छी कंपनी कौन सी है जिसको कोई और चाबी नहीं लगेगी? हाँ, वो आते थे पुराने जमाने, ताले ऐसे होते इसको किसी और की चाबी नहीं मिलेगी, उस कंपनी को बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसा ताला बनाया लीवर के कोई और चाबी नहीं लगेगी, वही चाबी लगेगी। लेकिन भगवान ने ऐसे आदमी बनाया है कि कोई दूसरा आदमी उस जैसा है ही नहीं। कितने आदमी संसार में, कोई तो एक खोपड़ी खोपड़ी मत नहीं आ रही। खोपड़ी खोपड़ी मत नहीं आ रही का मतलब हर एक आदमी दूसरे से अलग है। खोपड़ी कहते हैं इसको, खोपड़ी मत कहते हैं इसके अंदर जो बुद्धि है, हर एक की अलग अलग है, हर एक की अलग अलग। ईच पर्सन इज डीपली इंडिविजुअल, बहुत भिन्न है। ये भिन्नता किसने, किसको पता है? भगवान अभिज्ञ है, अभिज्ञ है। वो हर एक को जानता है कि इसको क्या इच्छा है, इसको कौन सा रूप देना है, इसको क्या काम है, वो जानता है, हम नहीं जानते। मुश्किल से कोई अच्छी फैक्ट्री होती है जो क्वालिटी कंट्रोल करके एक जैसा चीज बना सकता है, नहीं तो वो चीज ही बदल जाती है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है। लेकिन भगवान सब कुछ जानता है, जीव नहीं जानता। हरे कृष्णा। वो नहीं आए अब तक सुंदरलाल और पार्टी, अभी तक पहुंचे नहीं भक्त लोग, आएंगे कि नहीं आएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मियोसी शर्मा जी, मियासी आपने हमको कुछ अच्छी बातें बताई ताकि भगवान का सत्संग किया। मियासी हम इसलिए इनको बोलते हैं मियासी शर्मा का, मियासी मियासी धन्यवाद, थैंक यू, वी आर थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा जी दैट ही हैज गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट द ट्रांसेंडेंटल नेम फेम पास्ट टाइम इन पैराफेरली ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। धन्यवाद शर्मा जी,
ये जो ज्ञान प्रभु जी कह रहे हैं एक्चुअली ये बहुत कॉमन है इधर,
ये आता है कोटि मध्य एक धर्मचारी, ये धर्मचारी में आता है, इसके बाद आएगा कर्मनिष्ठ, इसके बाद आएगा ज्ञान, उसके बाद आएगा मुक्त, उसके बाद आएगा भक्त। तो ये लिस्ट में वहां कर्मचारी धर्मचारी में है, वेद वेद ज्ञान लिखा है, वेद जानने वाला।
उनको क्या जो 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 ज्ञान है ना वो सब वो लोग सोचते हैं कि ये सब लॉस लॉस ज्ञान है, इससे आगे और कुछ नहीं
है। बात ये है कि भगवान की सेवा नहीं करनी होती है और अपनी इच्छा के अनुसार जीने में जीना होता है, तो हम कहीं शास्त्र से एक टुकड़ा निकाल के उसमें से अपना काम निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय का मतलब क्या है पता है? ये इनकी बात करो, अर्ध कुकुटी न्याय का मतलब क्या है पता है? मुर्गी थी एक आदमी के पास, सोने का अंडा देती थी, तो रोज उसको कुछ खिलाना पड़ता था। इसने बोला अंडा तो देती है लेकिन अब इसको मुंह में कुछ खिलाना पड़ता है, इसका मुंह वाला हिस्सा काट देंगे तो फिर अंडा मिलेगा, लेकिन मुंह वाला हिस्सा काटा तो अंडा कहां से देगी? तो शास्त्रों में से जो हमारे काम की चीजें हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसको हाथ नहीं लगाते। जैसे काली की पूजा करने के लिए बकरे को हम बलि चढ़ाएंगे तो बकरे तो काट लेंगे, लेकिन बकरे के कान में कहना है कि बकरा तुमको मैं काटता हूं, मेरा अपना काम पड़ गया है, अगले जन्म में तुम मेरे को काटना, ये नहीं कह बोलते नहीं बोलते तो बकरा हंसता है, बोले तुम नहीं बोलो फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा थोड़ी
जो आज कटेगा वो कल
बिल्कुल हे कृष्णा
बीमार हो गए बाबा, काशी हो गया आपको,
हरे कृष्णा
प्रभु जी डॉक्टर साहब है, फिकर नहीं करो आप तो डॉक्टर साहब
है, हरे कृष्णा मत चित मदगत प्राणा, अगर मैं चित में नहीं रहूंगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे, तो फिर ये भक्त कैसे जी रहे हैं? बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च नित्यम। क्या करते हैं? मेरी कथा करते हैं नित्य, एक दूसरे को मेरी कथा बताते हैं, सुनते रहते हैं। वो कैसे जीवित हैं? इसलिए जीवित हैं कि वो मेरी कथा का रस आस्वादन करते रहते हैं। एक करते करते थक जाता है तो दूसरा सुनाने शुरू कर देता है, क्योंकि वो मेरी कथा सुनते हैं और मेरी कथा सुनाते हैं, इसलिए वो जीवित हैं। ऐसे भक्त विदुर और उद्धव थे, दिनों भगवान की कथा कर रहे थे, थक नहीं रहे थे। कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या मिलता है उनको? तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का मतलब दे आर सेटिस्फाइड। वो तृप्त हो जाते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। बोला संतुष्ट होकर सो जाते हैं? बोला नहीं नहीं, रमन्ति च, आनंद में मगन होके रमन करते हैं। क्या रमन? रमन कैसे? जूजू। बच्चे को जूजू देगा क्या करेगा? रमन करेगा, खेलेगा। तो उनको भगवान की कथा में खेलते हैं बैठ बहुत आनंद से। रमंती, रमंती का मतलब, रमंती का मतलब रेलिशिंग, रमन, रमंती च, दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर ट्रांसेंडेंटली रेलिशिंग इट। आनंद में मगन होके नाचते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे पढ़ेंगे, इधर छोड़ दें यहाँ कथा को। कहाँ चला गया प्रभु जी?
प्रभु जी तो आप कह रहे हैं कि रमन तीचा, तो हमको जैसे आप आया आज और इतना सुंदर प्रवचन दिए, तो इसमें रमन आता है सुनने में, तो वो हमको ये बार बार का मौका नहीं मिलता है कि आप हैं ऐसे लक्ष्य दे रहे हैं। तो जैसे रमन किच्चा जब कह रहे हैं तो मैं चीजें मेरे माइंड में कुछ आया, तो हमको वी हैव टू कीप इन टच विद भावतम ऑलवेज, सो दैट वी कैन डेवलप दैट रमन किच्चा। एंड सो व्हाट हैपेंड ऑल टू आवर टेंपल, टू आवर सोसाइटी हियर, टेंपल हियर, दैट वी कम आउट, वी सी डिवोटीज आर नॉट रिलीशिंग इट।
भक्ति का पहला अंग है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहला श्रवण है भगवान के बारे में श्रद्धा पूर्वक सुनना। सुनने में जब तक रुचि नहीं आएगी तब तक कीर्तन में भी आनंद नहीं आएगा। पहला काम है सुनना। सोए हुए आदमी को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? उठने, कैसे उठता है? सुनता है तब उठता है, देखने से नहीं उठता है, सुनने से उठता है। ऐसे माया की गोद में सोए हुए लोगों को जगाने के लिए श्रवण जरूरी है। जीव जागो गौर चंद्र बोल। कब तक माया की गोद में सोए रहोगे? सुनो, लिसन, सुनो। बार बार भगवान भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुनो, सुनो, ध्यान से सुनो। जब सुनोगे भगवान के बारे में तब भगवान के बारे में जानोगे, जब जानोगे तब उसकी कीर्ति गाओगे ना। किसी आदमी को आपकी बड़ाई करनी है, आपको कोई कहे ओ कृष्ण किशोर की जो है ना इसका बड़ाई करो, तो आप इसको जानोगे तो क्या बोलोगे, क्या कहोगे, क्या बोलोगे इसके बारे में? लेकिन अगर आप इसको जानते होंगे आप कहेंगे ये तो भाई बचपन से मंदिर में आता है, ये इतना पढ़ा लिखा है, ये सेवा कर सकती है, इसके बारे में जानोगे तब बोलोगे ना भाई। किसी आदमी के लिए आपको कहें कि इसकी महिमा गाओ, इसका कीर्तन करो, कीर्तन करो मतलब उसकी महिमा गाओ, तो कब गाओगे? जब उसके बारे में जानोगे तब गाओगे ना। तो जानना पहले जरूरी है, और जानता आप आदमी कब है? जब भगवान के बारे में सुनेगा तब जानेगा। तो सुनने में रुचि होगी तो आस्ते आस्ते आगे प्रगति होगी। तो भगवान की कथा सुनने में रुचि होनी चाहिए। भगवान प्राप्ति का प्रथम पहला फर्स्ट स्टेप है भगवान के बारे में सुनना। हरे कृष्ण, बोलिए शर्मा जी, कब आए यहां? एक साल हो गया तो अभी।
ये मेरी वाइफ है।
हाँ हाँ।